गुरु परंपरा के माध्यम से
अपने आराध्य राधा कृष्ण की पूजा करेंगे या नारायण की पूजा करेंगे या जिसका जैसा है वैसा पूजा करें। ये गुरु परंपरा की धारा। तो हम लोगों के नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अशोक सत्यमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का कल इस धरा धाम में आविर्भाव दिवस है। हमारे गुरु जी अपने जन्मदिन पर अपने गुरु जी से आरंभ कर अपने सारे गुरु परंपरा के आचार्यों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शन करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने समय में एक पद्धति का आविष्कार किया। वो शंकर संप्रदाय की है, पुरी में रहते समय उन्होंने इसको संग्रह किया। उसमें उन्होंने गुरु पंचक, कृष्ण पंचक, व्यास पंचक, आचार्य पंचक, पंच तत्व,
तत्व पंच,
पांच और दो, सात पंचक की पूजा का विधान दिया। जैसे कि व्यास पंचक में व्यास जी और उनके चार शिष्य पहिल वैशंपायन, सुमंत, जैमिनी और व्यास, और कृष्ण पंचक में कृष्णचंद्र जी, राधिका जी, गौर जी, गदाधर जी और एक और को लिया है। ये पांच तत्वों का पंच तत्व में श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवास आदि से गौर भक्त। आचार्य पंचक में अपनी पांच पीढ़ी के गुरु, जैसे गुरु जी कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी, गौरकिशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, ये चार हुए ना, इन चारों को, और बीच में सुखदेव गोस्वामी या किसको रखते हैं। इस तरह से पंच पंच, इस तरह से सात पंच, सात पांच से 35 लोगों की गुरु परंपरा में पूजा करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते थे? अपने केवल गुरु को मानने से और गुरु परंपरा को नहीं मानते हैं तो निगम कल्प करु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रवसंजितम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरोहु रसिका भू भावुका। ये जो कृष्ण प्रेम, ये जगत की चीज नहीं है, गोलोक वृंदावन की चीज है। कृष्ण कृष्ण से आए ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से सुखदेव गोस्वामी, व्यास, व्यास से सुखदेव गोस्वामी, इस तरह से आज तक की धारा में वो चीज आ रही। यदि एक कड़ी को बीच में किसी एक को बंद कर दिया तो वो धारा कैसे आएगी? धारा नहीं आएगी। इसलिए अपने सब गुरुओं को मानना है, नहीं? एक को मानते हैं, एक दूसरे को नहीं मानते हैं तो वो अर्ध को कोटि न्याय हो जाएगा। बस अपने गुरु जी ने जो कहा है, उन्होंने जो लिखा है, बस आप मैं मानता हूं। आई डोंट बिलीव एनी आचार्य, आई ओनली डिपेंड ऑन माई गुरुदेव, व्हाट ही हैज रिटन, व्हाट ही हैज डन, आई बिलीव इन हिम, नॉट एनी गुरु परंपरा। देन everything will be spoiled. There will be no link from Krishna to here. So he will not have the real thing. इसलिए ऐसा नहीं, हम लोग को गुरु परंपरा जानना चाहिए। संसार में जैसे वंश परंपरा होती है, अपने पिताजी को मानते हैं, अपने पितामह को नहीं मानते हैं, तो तुम्हारे पिताजी कहाँ आए, कहाँ से? इसलिए यह ठीक नहीं। इसलिए भजन राज्य में अपने गुरु को, जैसे अब हम लोग देखिए झट एकदम लिंक लगा लेंगे कहाँ से, भक्ति प्रज्ञान के सौ गोस्वामी महाराज जी, नित्य लीला प्रवृत्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ जगवती ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, स्वरूप दामोदर राय रामानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि, श्री गौर भक्त बिंद, ईश्वर पुरीपाद माधवेंद्र पुरीपाद, लक्ष्मीपति मध्वाचार्य के ये सब मध्वाचार्य, फिर व्यास और व्यास से नारद, ब्रह्मा और एकदम पहुंच गए ना। इस लिंग को जो नहीं मानता है वो भजन करते हैं, ऐसे उनका भजन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गुरु अपने जन्म के दिन में अपनी पूजा करवाने के लिए बहुत वो उत्तावला नहीं होता, अपनी पूजा के लिए वो व्यास पूजा नहीं रख, उसका नाम रखा है व्यास पूजा, माने व्यास की जो लाइन है, धारा है, उसकी पूजा गुरु अपने जन्मदिन में करता। गुरु सूर्य
और दीप
दो पूजा ऑफ देयर गुरु परंपरा, फ्रॉम गुरु टू कृष्ण, दिस इज व्यास पूजा। ऐसा जो नहीं करेगा, गुरु परंपरा जानता ही नहीं है, इफ ही डज नॉट नो द गुरु परंपरा, ही कैन नॉट डू भजन, भजन नहीं कर सकता। साधारण लोग रूप में ऐसा समझते हैं, हरे भाई कहीं रहेंगे, हरे कृष्ण कर लेंगे, कृष्ण का कोई मंत्र, कृष्ण शरणम मम, या कोई मंत्र ले लेंगे और स्वच्छंद रूप से रहेंगे, हमारे गुरु जी ही बात, तो उसके बाद में कोई कुछ नहीं। ऐसा ही साधारण रूप में सब लोग भजन करते हैं, इसलिए उनकी भजन सिद्धि नहीं होती। वो तो समझते हैं हमारी भजन सिद्धि हो जाए, किंतु नहीं होती, तो फिर ये गुरु परंपरा की क्या जरूरत। इसलिए ऐसा नहीं, उस लाइन में आना चाहिए। इसीलिए कह दिया संप्रदाय विहीना जी मंत्र से विफला माला, संप्रदाय को छोड़ करके और जितने भी मंत्र है वो सब बेकार। बेकार किस लिए? जो आप नौकरी करके रुपया पैसा आपको मिल जाता है, तो वो भजन करके आपको वही रुपया पैसा वर्डली चीजें मिल जाएंगे, मल्ली वर्डली थिंग, you can get it by service, by business and all by all other means, this you can have, but you cannot have supernatural immanent krishna or krishna prem, wo nahi milega, ye to sab kuch aisa hi mil jayega, to wahi cheez jo de karke bhajan se kya hoga, anarth nahi dur hoga, वही अनर्थ ही प्रधान हो जाएगा, भजन नहीं रहेगा उस परंपरा में आने से, भजन नहीं होगा, अनर्थ दूर नहीं होगा, उन्हीं चीजों के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को देखो और सब लोगों को, हमारे रूप सनातन इत्यादि को देखो, क्या किया उन लोगों ने, वर्ल्डली चीजों को एकदम छोड़ दिया, इसे कोई मतलब नहीं रहे, नहीं तो उसी के लिए परस्पर विरोध होगा और भजन दूर हो जाएगा, इसलिए इसके तरफ ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे लोगों को शुक्राचार्य की परंपरा में भेज दिया, या शुक्राचार्य हमारा शुक्र का वो आचार्य है, शुक्र से जन्म मरण और ये सब चीज होता है, बस इसी में फंसे रहो, इसलिए धर्म में नहीं जाना है हम लोग के लिए सीधा रास्ता है गुरु परंपरा के लिए। शंकर संप्रदाय में भी पूजा होती है व्यास की। व्यास कहते हैं कौन, कौन है व्यास? एक केंद्र बिंदु से लेकर के उसको बढ़ाते बढ़ाते सर्कल के रूप में वो जो होता है वो होता है व्यास। एक केंद्र बिंदु से कोई एक समान दूरी लेकर वहां से वृत्त जो खींचा जाता है वो वृत्त का अंतिम बिंदु सब जो है उसको कहते हैं व्यास। अर्थात तो बिंदु से उसको बढ़ा करके कहां तक लेकर के वो ले गए किसी को, समस्त जगत के कारण सर्व कारण कारण कृष्ण है। उस कृष्ण को जगत में विस्तार किया, उनके नाम रूप गुण लीला किया, उनको कहते हैं प्यार। जो भगवान की लीला कथाओं को जगत में प्रसारित करके जीवों के अज्ञान को दूर कर भगवान के प्रेम तक उसको पहुंचा दें, यह है व्यास का। जो इसको कर सकेगा वो व्यास की गद्दी पर वही आचार्य होता है। इसलिए उनकी गद्दी पर बैठ करके जो आचार्य होते हैं उनकी पूजा भी व्यास पूजा इस रूप में कही गई है। इसलिए व्यास जी ने क्या किया देखो, उनके पहले छह प्रकार के दर्शन शास्त्रों में पांच प्रकार के दर्शन शास्त्र वाले ऋषि लोग आए, चार्वाक आए, चार्वाक को भी ऋषि कहते हैं। इसके बाद में शंख वाले कपिल जी आए, वैशेषिक कणाद ऋषि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और पातंजलि योग के, ये सब ऋषि लोग आए। हमारे चार्वाक जी ने कहा चारुवाक, चारु माने सुंदर, अपाप मधु। जो अपाप मधु क्या चीज, ए ड्रिंक एंड बी मेरी, हाउ पियो मत हो। किशोर किशोरियों का संग, धन संपत्ति, खाने के लिए घी और घी से बना हुआ चीज, मिठाई चिठाई इत्यादि सेवा से खूब खाओ पियो मौज करो और आराम करो, यही जीवन है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। इसलिए अधिकांश लोगों ने इसको ग्रहण किया, किंतु उसके बाद वाले जो आए बोलारी इसमें मरेगा, इसमें कोई चारु में जो दिखता है मधुर वो कोई भी चीज ठीक नहीं है, अपार मधुर है। इट सीम्स टू बी सो स्वीट बट इन द एंड इट इज नॉट स्वीट। All worldly desires up to swarga and everything. कोई भी चीज अच्छी नहीं है उन लोगों ने। इसलिए उन्होंने कहा कि जो करो, पातंजलि जी आए बोले, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि कर, इसके द्वारा अत्यंत दुख की निवृत्ति हो जाएगी। बस इसी के करीब करीब में पंच दर्शनों ने ऐसा ही कहा। व्यास जी आए और उन्होंने कहा जैसे ये सब चीजें ठीक नहीं है, जहां तक करें वहां तक कुछ कुछ ठीक होने पर भी ये अंतिम चीजें नहीं है। जीव चित्त चेतन है, भगवान का वो अंश है। इन पद्धतियों के द्वारा आतंतिक रूप में दुख की निवृत्ति नहीं होती। That they came and told that all the rishis and maharshis what they have told, जो शंख न्याय and all other things and चार्वाक has told everything, they are somewhat true, somewhat to some extent, but not in full extent. All are miserable, दुख देने वाले। उन्होंने जीव को भगवान का अंश बतलाया और भगवान को भूल करके जीव इस जगत में आया है और उसको तब सुख होगा जब वो भगवान के सन्मुख करके गुरु की सेवा के द्वारा भगवान के उन्मुख होगा। भयं द्वितीयाति तन्माया तो बुध आभजन तन भक्त गुरु देवता। गुरु के चरणों में सबसे पहले आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। जीव आया कैसे? भगवान को भूल करके आया। भगवान को भूलने से ही उसके जितने भी बुद्धि थी वो सब ढक गई और भगवान से उसको दूर फेंक दिया। एक विक्षेपात्मिका माया और एक अवर्णात्मिका, दूर फेंक करके उसके आत्मा को ढक दिया। तब वो भगवान से दूर होकर के अपने को द्वितीय अभिनिवेश में आया। द्वितीय अभिनिवेश माने क्या? भगवान की सेवा को छोड़ करके अपने सुख में वो लग गया। इसको कहते हैं द्वितीय अभिनिवेश। इसलिए द्वितीय अभिनिवेश जी को है, इफ एनीवन हैज दिस सेकंड थिंग दैट आई विल बी हैप्पी लिविंग कृष्णा फॉरगेटिंग कृष्णा देन एनी हाउ इफ ही हैज गुड संस्कार, वो संस्कार उसके अच्छे हैं तो सदगुरु के चरणों में जाता है। देन ही टेक्स रिजल्ट ऑफ सदगुरु। तो जो व्यक्ति अपने समस्त जागतिक डिजायर को इच्छाओं को दूर करके गुरु के शरणागत होता है तो गुरु उसको हेल्प करके उसकी सहायता करके तत्व ज्ञान उसमें दे करके और भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित कर देता है। वैसा जीव कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? आतंतिक दुख निवृत्ति तो अपने आप रास्ते में हो जाएगी अपने आप। और इसके बाद में बैकुंठ, बैकुंठ से ऊपर अयोध्या धाम, उससे भी ऊपर द्वारका, गोलोक में भीतर में प्रवेश किया, गोलोक में भी शांत रस दास्य रस, इसके ऊपर में वृंदावन में पहुंच करके सख्य बात्सल्य और अंत में सबके ऊपर में मधुर रस को वो प्राप्त कर सकता है उस गुरु जी की कृपा से। व्यास जी ने इन चीजों को दिया और इस चीज में लोगों की रुचि प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाने के लिए उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का दशम स्कंद में विशेष रूप से वर्णन किया और सब लीलों में स्कंदों में जीव तत्व माया तत्व कृष्ण तत्व ये सब का वर्णन सब किया। अज्ञानता का संसार क्या चीज है इसका वर्णन किया और दशम स्कंद में कृष्ण की विशेष लीलाओं का वर्णन करके जीवों को उसमें रुचि लाने की चेष्टा की और अंत में दशम स्कंद के बीच में 29, 30, 31, 32 ये पंच प्राण है और उसमें भी पंच प्राण के बीच में जो बीच वाला जो प्राण है वो 31वां इसका उपदेश किया। किसी किसी जीव का अगले जीव का इसमें और इतने सुंदर रूप में वर्णन किया जो किसी भी शास्त्र में कहीं भी ये नहीं मिलेगा। कोई किसी जीव का ऐसा सौभाग्य नहीं जिससे समझेगा। और फिर ये कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? उसमें भी दो पहलू बनाया, एक मिलन में कृष्ण की सेवा का और एक विरह, जबकि कृष्ण से वो अलग हो जाते हैं ब्रजवासी। विप्रलम्ब जी इसको कहते हैं। हम लोग जगत में इसीलिए आए थे, किंतु ओटन लगे कपार, सारा जीवन इसमें चला जाता है, साधु संग हो नहीं पाता। तो इसके बाद में विरह, पहले दिखाया पूर्वराग, गोपी गीत वेणु गीत में, और अंत में फिर दिखाया उद्धव संदेश, भ्रमर गीत इत्यादि। भ्रमर गीत और एकादश और द्वादश में, एकादश और द्वादश में बताया कैसे उस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं, साधन क्या है। इन सब में साधन नहीं बतलाया, इसमें एक लोभ दिखाया और एकादश द्वादश स्कंद में साधन दिखलाया। जैसे एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में उद्धव जी कृष्ण के निकट जाते हैं, कृष्ण किस स्थिति में है, कृष्ण जी एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए हैं और सब जतवंशी लोग लड़ लड़ करके परस्पर सरकंडे से ध्वस्त हो गए हैं। All the Jadvansis have been destroyed, quarreling among themselves. Baldev Prabhu has gone away in a shape of serpent, white serpent, and Krishna is sitting on a peepal tree, very, mane. ग्रेव मूड, बड़े गंभीर रूप में बैठे, और उसी समय में उद्धव जी आए। वहीं पर जहां पर सोमनाथ जी का मंदिर है भरावल के पास, वहीं पर बैठे हैं, उद्धव जी आए और इतने में मैत्रेय ऋषि जी आ गए। उसमें उद्धव जी को लक्ष्य करके ये सब बतला रहे हैं, अपना सब तत्व कृष्ण स्वयं उनको बतला रहे हैं। तो 19वें अध्याय में ये वर्णन किया, उद्धव जी कुछ भाप लिया, समझ लिया, जो कृष्ण, he knew that कृष्ण is going to end his pastime, so he asked something and what कृष्ण replied, this is called उद्धव संवाद। तो वहां पर कृष्ण ने उनको बतलाया, बहुत ही छोटा सा अध्याय है किंतु बहुत अच्छा है साधन के लिए। वैसे तो सब श्रीमद् भागवत में सब सार ही सार है, कोई असार नहीं है, नहीं बतलाया ना निगम कल्प तरो, सब असार संसार है। तभी दूध में सभी सार होने पर भी साधु लोग मंथन करके उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, जब मक्खन निकाल लिया तो बाकी क्या रहा, कभी खाने से कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा, किंतु उसका घी जो सार है ये निकल आया। इन मिल्क देयर इज नथिंग, असार नहीं है,
नो एवरीथिंग इज द एसेंस,
ऐसा एवरीथिंग इज
नथिंग इज
नथिंग इज अनयूजुअल,
क्या अनयूजुअल,
अनयूजुअल एवरीथिंग इज, बट इवन वी मेक इट कर्ड एंड वी चर
चर्न
चर्न इट एंड घी कम्स। Like way, in the Srimad Bhagavatam, nothing is unuseful, every thing. But yet, Sanatana Goswami in his Vyad Bhagavatam has told this. उन्होंने सनातन गोस्वामी ने कहा, उसका भी सार मत करके अपनी मैया को उन्होंने वो सार क्या गोपी प्रेम। इसी तरह से उन्होंने बतलाया भगवान की भक्ति के द्वारा ही सब कुछ हो जाएगा। ये कैसे होगी भक्ति, कैसे भक्ति होगी? उन्होंने कहा भगवान की लीला कथाओं का, अमृतमय लीला कथाओं का जो नित्य सेवन करेगा, जो लोग अपने आप हरिनाम भी करते हैं और अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के यहाँ, वैष्णवों के यहाँ भगवान की मधुर अमृतमय अमृत लीला कथाओं का श्रवण नहीं करते, वो भक्ति अधूरी रह जाती है, स्टैग्नेंट हो जाएगी। इसलिए अपने से उन्नत स्वजातीय स्निग्ध आशय वैष्णवों के साहित्य में हरि कथा को सुनना पड़ेगा। अमृत किस लिए कहा गया, अमृतमय कथा, फिर वो मरता नहीं। अमृत किसको कहते हैं, आनंद को अमृत कहते हैं, आनंद को बंद नहीं कर दिया, वो बंद थोड़ा सा कर दो ना, कर अमृत में अमृत कमाने क्या न अमृत इसे अमृत देवताओं का अमृत कुछ आयु बढ़ा देगा किंतु मरने से बचा नहीं सकेगा। और वो रोज रोज प्रतिक्षण मरते हैं, सब समय दुखी अनुभूति करते हैं, दे आर अलाइव ऑल सफरिंग, काम क्रोध लोभ मद मोह बढ़ जाता है उनका, इसलिए वो अमृत नहीं है। मोक्ष को भी अमृत कहा गया किंतु मोक्ष में सुख की अनुभूति नहीं, आनंद नहीं, इसलिए अमृतमय मैंने किया, नित्य काल के लिए अत्यंत सुखमय आनंदमय स्थिति का लाभ करना ही हो सकता है। तो ये क्या किया, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की जितनी प्रकार की सेवाएं हैं सभी अमृतमय होने पर भी ब्रज की सख्य दास्य और बात्सल्य और मधुर ये सबसे उन्नत अमृत, और उनमें भी राय रामानंद के संवाद में आप लोगों ने सबसे कहा मधुर रस की जो भक्ति है वही यथार्थ में अमृतमय है। इसलिए उन्होंने कहा कि अमृतमयी कथाओं का सेवन करे जो, उसको जरूर भक्ति होगी, और भगवान के मधुर नामों का गुरु से सुन करके अनुसुणियात अथ वर्णीय जह, पहले सुने सुन करके यहां धारणा करे और फिर वर्णन करे, तो इसके द्वारा भक्ति जरूर होगी। दो, भगवान का प्रतिपूर्वक पूजन, भगवान माने राधा कृष्ण जुगल, इनकी प्रेममय सेवा माने कोई शांत भाव से करते हैं, कोई सख्य भाव से, कोई दास्य भाव से, अधिकांश लोग दास्य भाव से करते हैं, और ब्रज में रहने वाले विशेष करके महिलाएं करती हैं बाल गोपाल की सेवा, और उनमें भी उन्नत वाले जो हैं सदगुरु से इस चीज को पाने वाले मधुर रस से राधा कृष्ण की जुगल की उपासना करते हैं, तो ऐसा उनका पूजन हो प्रीति पूर्वक। विशेष करके अर्चन मार्ग वाले वदी मार्ग की अपेक्षा भाव मार्ग का जो है वो श्रेष्ठ है पूजन, किंतु उसके अधिकारी कम है, प्रारंभ से ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। जो ऐसे प्रेममयी सेवा भी, विशेष करके गुरु की सेवा को बतलाया गया भी संभव सेवा होनी चाहिए। गुरु की कैसे सेवा करेंगे, विसंभेन गुरु सेवा, किंतु इस जगत में साधन की स्थिति में विसंभव भाई हमारे विचार से वो पूरा ठीक नहीं है, वो किसके लिए है, अनर्थ मुक्त साधकों के लिए, और हम जैसे अनर्थ ग्रस्त लोगों के लिए विसंभेन गुरु सेवा यह अपराध का कारण बन जाता है। इसलिए अभी साधन की साधारण निम्न स्थिति में कैपी संबेन गुरु सेवा होने से ही उसके अंदर में कुछ अनर्थ है और गुरु से भी उसका खन जाएगा। वो विषम सेवा कर रहे हैं ना, तो गुरु को शासन करेगा। गुरु जी ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, और यदि गुरु उसकी बात नहीं मानेंगे तब संभव वाला क्या करेगा, कर जैसे गुरु को हम छोड़ देते हैं, आज तो उनकी बनी नहीं, बस हो गया। इसलिए इस विषय में खूब सावधान रह सके, अभी नहीं, अभी तो उनके आदेश निर्देश विधि पूर्वक ही करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा अनर्थ दूर हो जाएगा तब अपने आप विसंभव में हम प्रतिष्ठित हो। विषम माने विगत संभव, संभव माने ऐश्वर्य की बुद्धि, उनके प्रति आदर की बुद्धि है, ये हमसे पूज्य हैं और हमसे बहुत बड़े हैं, हमारी इनके बीच में दूर फैसला है, ये बहुत ज्ञानी है, मैं बहुत अबोध हूं, ये विराट ऐश्वर्य युक्त है, हम साधारण कोटि के बद्ध जीव हैं,